लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, 18 मार्च को युद्ध विराम समाप्त होने और इसराइली बमबारी फिर से शुरू होने के बाद से अब तक करीब 800 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसियों ने चिंता जताई है कि गाजा पट्टी में इसराइली सेना ने नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं और मानवीय सहायता पहुंचाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की आपूर्ति पर इसराइल द्वारा पूर्ण रूप से पाबंदी थोपे जाने के 3 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है और जरूरी सामान की किल्लत महसूस की जाने लगी है। इसके मद्देनजर यूएन मानवतावादी एजेंसियां जरूरतमंद आबादी तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासों में जुटी हैं, मगर उनके अधिकांश अनुरोधों को नकारा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भी युद्ध विराम बहाली की पुकार लगाई है और कहा है कि फिलिस्तीनी आबादी पहले से ही बहुत पीड़ा से गुजर चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
गाजा में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी का कहना है कि गुरुवार रात फिर से भीषण बमबारी हुई है। कुछ दिन पहले अचानक युद्ध विराम टूट जाने के बाद बमबारी की ये चौथी रात थी। हालात बेहद गंभीर और चिंताजनक बताए गए हैं। 17 मार्च से इजरायली बमबारी में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। इजरायली सैन्य बलों ने अपनी जमीनी कार्रवाई फिर शुरू करने की भी घोषणा की है और कई इलाकों में सिलसिलेवार हमले किए गए हैं। इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पत्रकारों से बातचीत में गाजा पट्टी में हुई मौतों और विध्वंस पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया।
On the other hand, I'm saddened and shocked because death and destruction are back in Gaza and the Palestinian people has already suffered too much.
महासचिव गुटेरेश कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूँ क्योंकि गाजा में तबाही फिर शुरू हो गई है। फलस्तीनी आबादी पहले ही बहुत पीड़ा भोग चुकी है। यूएन प्रमुख ने युद्ध विराम का सम्मान किए जाने, गाजा के सभी इलाकों में बेरोकटोक मानवीय सहायता पहुंचाए जाने और सभी बंधकों की तत्काल बिना शर्त रिहाई की अपनी अपील दोहराई। गाजा में नाजुक हालात में 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू हुआ था और उसके बाद से वहां मानवीय सहायता काफिलों का पहुंचना भी शुरू हुआ था, मगर 2 मार्च के बाद से इजरायल ने वहां मानवीय सहायता आपूर्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच मध्य पूर्व में हालात पर सुरक्षा परिषद की गुरुवार को एक बैठक हुई। राजनीतिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी खालिद खियरी ने सदस्य देशों को गाजा में हालात से अवगत कराया। उन्होंने इसराइल और हमास से युद्ध विराम फिर बहाल करने और सभी शेष बंधकों को रिहा किए जाने की अपील की है। गाजा में हमास की कैद में बंधक के रूप में करीब 500 दिन गुजारने के बाद रिहा हुए एक इजरायली नागरिक ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान अपनी व्यथा को प्रतिनिधियों के सामने रखा।
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विशेषज्ञों ने शुक्रवार 21 मार्च को प्रथम विश्व हिमनद दिवस पर आगाह किया है कि अगर हिमनदों का पिघलना इसी दर से जारी रहा तो कई क्षेत्रों में 21वीं सदी पूरी होने से पहले ही वो खत्म हो जाएंगे। निचली क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होने की आशंका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की विज्ञान अधिकारी डॉक्टर सुलग्ना मिश्रा ने कहा कि हिमनद बढ़ते तापमान और मानव जनित जलवायु परिवर्तन होने वाली तापमान वृद्धि के कारण अभूतपूर्व गति से पिघल रहे हैं। UN हिंदी न्यूज के सचिन गौड़ ने हिमनदों की स्थिति के बारे में डॉक्टर मिश्रा से बातें की।
दुनिया भर में जो ग्लेशियर की स्थिति है वो कितनी चिंताजनक है।
हमें बार बार ये रिपोर्ट आती है देखने में कि ग्लेशियर खिसक रहे हैं, उनका आकार घट रहा है। दुनिया के विभिन्न जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें किस तरह का रुझान देख रहे हैं?
ये आपने एकदम सच बात बोला कि ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज ज्यादा होते जा रहा है, हमारा टेम्परेचर राइज जो हम लोग देख रहे हैं वो जैसे ही ज्यादा होते जा रहा है, रेट एट विच इट इज मेल्टिंग ये भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा होते जा रहा है। अगर आप 2000 से देखें तक, 2000 से लेकर 2023 तक में 5% ग्लोबल एवरेज ग्लेशियर का मेल्ट हो गया है। ये ग्लोबल एवरेज है। लेकिन फिर आप अगर छोटे छोटे जगहों पे जाएंगे, स्पेसिफिक जगहों पे जाएंगे, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे अप टू 40% भी हो चुका है मेल्ट। जैसे सेंट्रल यूरोप हो गया, काकासोस मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो गया, न्यूजीलैंड में 30% के आसपास मेल्ट हो चुका है जस्ट 2000 से लेके 2023 तक में। लास्ट के 2-3 सालों में स्विट्जरलैंड में 10% से ज्यादा मेल्ट हो गया है।
पहली बार है जब 21 मार्च को विश्व दिवस जा रहा है ग्लेशियर के लिए, और 2025 तो ग्लेशियर संरक्षण के लिए एक साल घोषित ही किया गया है। तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि ये जो आयोजन है कितना महत्वपूर्ण है लोगों को जागरूक बनाने के लिए, और WMO इसमें उसकी क्या भूमिका है?
ये सारे देशों की सहमति से UN जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है, और WMO एंड यूनेस्को, इन दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि हम लोग ये ईयर को इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस ईयर में इज टू ब्रिंग मेंबर स्टेट्स टुगेदर, उनको साथ में मिला के काम करवाना है, काम करना है साथ में, एंड अवेयरनेस रेजिंग करना है। हम लोग फंड्स रिसोर्सेस भी जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था UN Women का 69वां सत्र न्यूयॉर्क में 10 से 21 मार्च तक चला। इस सत्र में महिला सशक्तिकरण से जुड़े अनेक मुद्दों पर वैश्विक चर्चाएं हुई, जिनमें दुनिया भर से आए सैकड़ों प्रतिनिधियों ने शिरकत की। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकारों को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को हासिल करने के इरादे से एक नया कार्यवाही एजेंडा प्रस्तुत किया गया। UN हिंदी की सहयोगी पूजा यादव ने सत्र का जायजा लिया।
इस सत्र का मुख्य ध्यान 1995 में पारित हुए बीजिंग घोषणा पत्र व कार्यवाही मंच पर केंद्रित रहा, जिसका लक्ष्य लैंगिक समानता को साकार करना और महिला अधिकारों को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र ने महिला अधिकारों को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को हासिल करने के इरादे से कुछ ही दिन पहले बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा भी प्रस्तुत किया था। बीजिंग घोषणा पत्र व कार्यवाही मंच में किए गए वादों को आगे बढ़ाता है। इस सप्ताह भी महिलाओं और लैंगिक समानता से जुड़े अनेक सम्मेलन आयोजित हुए। बाल विवाह को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास के विषय पर भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन इक्वेलिटी नाउ की वैश्विक कार्यकारी निदेशक मोना सिन्हा ने कहा,
12 मिलियन गर्ल्स आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 एंड विद दैट।
बाल विवाह कोई इतिहास की बात नहीं है, बल्कि आज भी हर साल करीब 25 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, और इसके साथ ही वे अपने बचपन की शिक्षा और अक्सर अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता और भविष्य के अवसर खो देती हैं। ये थी महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन इक्वेलिटी नाउ की वैश्विक कार्यकारी निदेशक मोना सिन्हा। इन कार्यक्रमों में अलग अलग क्षेत्रों से आई महिलाओं ने शिरकत की। बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा में सभी महिलाओं व लड़कियों के लिए कुछ लक्ष्य तैयार किए गए हैं, जैसे कि डिजिटल क्रांति, निर्धनता से मुक्ति, हिंसा की समाप्ति, पूर्ण व समान निर्णय निर्धारण की शक्ति, शांति व सुरक्षा मामलों और जलवायु न्याय में समान आवाज।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
ले ले
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 27 मार्च को एक संदेश में 2025 के पवित्र वर्ष की पृष्ठभूमि में पाप स्वीकारकर्ताओं की विशेष भूमिका पर विचार किया और उन्हें आमंत्रित किया कि विश्वासियों के साथ मेल मिलाप और नवीनीकरण के मार्ग पर चलते हुए वे दया के सेवक बने। गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने अपोस्टोलिक पेनिटेंसियरी अर्थात प्रेरितिक दंडागार द्वारा आयोजित आंतरिक फोरम के 35वें पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए यह प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। उन्होंने कहा, विशेष रूप से जयंती वर्ष के तीर्थयात्रियों के साथ दया का समारोह मनाना एक सौभाग्य है। ईश्वर ने हमें अपनी कृपा से दया के सेवक बनाया है। यह एक वरदान है जो हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हम स्वयं ईश्वरीय क्षमा का अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं। 24 से 28 मार्च तक आयोजित उक्त कार्यक्रम में पाप स्वीकारकर्ताओं की सकारात्मक प्रेरिताई के महत्व के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रतिभागियों को प्रिय भाइयों कहकर संबोधित करते हुए संत पापा ने उनसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनने का आग्रह किया, इसलिए कि प्रार्थना उनकी प्रेरिताई का आधार है। संदेश में उन्होंने लिखा, प्रार्थना में आपकी प्रेरिताई की नींव निहित है जिसके माध्यम से आप येसु के कार्य को आगे बढ़ाते हैं जो अभी भी और निरंतर यह दुहराते हैं। मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, जाओ और अब से पाप मत करना। संत पापा ने कहा, कैथलिक कलीसिया के जयंती वर्ष के दौरान प्रभु के मुक्तिदायक शब्द संपूर्ण कलीसिया में गूंजे जिससे हृदयों का नवीनीकरण हो जो ईश्वर के साथ मेल मिलाप से प्रवाहित होता है और नवीकृत भाईचारे के रिश्तों का रास्ता खोलता है। संत पापा ने दया और शांति के बीच संबंध पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सच्ची शांति ईश्वर की दया से उत्पन्न होती है तथा ऐसी आशा का संचार करती है जो कभी निराश नहीं करती। संत पापा फ्रांसिस की स्वास्थ्य स्थिति पर पत्रकारों के साथ रूबरू होते हुए गुरुवार को वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने इस बात की पुष्टि की कि संत पापा फ्रांसिस इस समय वैटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक प्रासाद में स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। कार्डिनल को उम्मीद है कि संत पापा फ्रांसिस आराम करेंगे और धीरे धीरे ठीक हो सकेंगे। उन्होंने 5 साल पहले कोविड महामारी के बीच संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में हुए स्टासियो ऑर्बिस को याद करते हुए रेखांकित किया कि तब की तरह संत पापा संपूर्ण कलीसिया और सभी विश्वासियों के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी बीमारी के दिनों में उनके प्रति प्रदर्शित स्नेह और सबसे बढ़कर उनके लिए अर्पित प्रार्थना से स्पष्ट होता है जो आज भी जारी है। और इसी बीच वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने गुरुवार को यूरोप पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर संत पापा फ्रांसिस के उस आह्वान को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि शब्दों को निरस्त करें ताकि उन्हें संघर्ष में बदलने से रोका जा सके। उन्होंने यूक्रेन के लिए बिला शर्त वार्ता का आह्वान किया और गाजा में संयम की भावना का आह्वान किया, साथ ही परमाणु हथियारों के कब्जे को अनैतिक बताते हुए इसकी निंदा की। रोम के निकटवर्ती साक्रोफानो में आयोजित शिविर के प्रतिभागियों को संबोधित कर कार्डिनल महोदय ने यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता, हमास और इजराइल की ओर से संयम की भावना और गाजा के लिए हथियारों का सहारा लिए बिना समाधान की अपील की। कार्डिनल ने उन युद्धों पर चिंता व्यक्त की जो विश्व को विभाजित कर रहे हैं, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व में लड़े जा रहे युद्ध, लेकिन साथ ही मौखिक युद्धों पर भी चिंता व्यक्त की जो तनाव को प्रश्रय दे रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए जारी वार्ताओं के मद्देनजर कार्डिनल ने आशा व्यक्त की कि सकारात्मक निष्कर्ष पर वास्तव में पहुंचा जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि वार्ता बिना किसी पूर्व शर्त के की जाए ताकि सहमति का बिंदु पाया जा सके और अंततः युद्ध विराम पर पहुंचा जा सके और फिर उस न्यायपूर्ण और स्थायी शांति तक पहुंचने के लिए वास्तविक वार्ता हो जिसकी हम सभी आशा करते हैं। कार्डिनल पारोलिन ने गाजा में भी समाधान का आह्वान किया तथा कहा कि अस्थायी युद्ध विराम स्थायी युद्ध विराम में बदल सकता है ताकि शांति और पुनर्निर्माण की चर्चा शुरू हो सके। और पेरिस में इच्छुक लोगों के गठबंधन के शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कार्डिनल महोदय ने इस बात की पुनरावृत्ति की कि संपूर्ण विश्व का जीवन विभिन्न राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि वे स्वयं के लिए बनाए गए नियमों का पालन करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में यूरोपीय लोगों को परजीवी कहे जाने पर प्रतिक्रिया दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि भाषा का निरस्त्रीकरण आवश्यक है। हर हालत में भाषा की सौम्यता को बनाए रखने का आह्वान कर उन्होंने कहा कि हमें शब्दों को निरस्त्र करने की जरूरत है। संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को उद्धृत कर उन्होंने कहा, शब्दों को निरस्त्र करें ताकि वे संघर्ष और युद्ध बनने से बचें। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया द्वारा वर्ष 2025 के दौरान मनाए जा रहे कलीसियाई जयंती वर्ष के एक भाग के रूप में ओपन डोर्स अर्थात खुले दरवाजे विषय पर बांग्लादेश और बेनिन, मोरक्को और वेटिकन में खींची गई 25 तस्वीरें वेटिकन उद्यान के कसिनो पियो चतुर्थ में प्रदर्शित की जा रही हैं। इसका उद्घाटन मंगलवार 25 मार्च को किया गया। इमोशंस टू क्रिएट चेंज और वेटिकन संचार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रदर्शनी में धरती के सभी कोनों से ली गई 25 छवियां और 9 विभिन्न फोटोग्राफरों की कृतियों को शामिल किया गया है। प्रत्येक फोटोग्राफर ने खुले दरवाजे विषय की स्वतंत्र रूप से व्याख्या की है और विभिन्न प्रकार के पोर्टल और उनका उपयोग करने वाले मनुष्य चित्रों में प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर संचार विभाग के प्रीफेक्ट पाओलो रूफिनी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शित तस्वीरें इस बात की याद दिलाती हैं कि हर दरवाजा खोला जा सकता है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।